जब निरंजन विष्णु, तब निरंजन विष्णु में समाई, तब विष्णु अस बोल्या भाई, कह विष्णु मौसम को आही, चार पदार्थ हमसे पाई, काम मोक्ष धर्मार्थ माही, चाहे जौन देऊ मैं ताही। कहते हैं चार मुक्ति है मेरे पास और चार पदार्थ हैं, अर्थ का अर्थ धर्म का मोक्ष मैं जिसको दे दूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं और ज्योत निरंजन से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। अब विष्णु जी भी अंग्रेजी बोलन लग गया तो परमात्मा ने सोचा ये तो इसमें भी काल बोल गया, कई भी यू काल प्रवेश कर गया, इसकी बुद्धि बदल दी पौड़ी आत्मा की। उसके बाद परमात्मा कहां पहुंचे, शिव जी के पास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेवे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। ये सोहम मंत्र इस पृथ्वी में किसी शास्त्र में नहीं था। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। श्री राम नामदेव जी पहले ओम नाम जपते थे, फिर परमात्मा उनको मिले आकर के ऐसे ही गुप्त रूप अन्य रूप बना के, फिर उनको सारी विधि बताई, फिर वो सोहम नाम भी साथ में प्राप्त किया। उसके बाद कहते हैं जब सार शब्द हमने उनको दिया तो नामदेव जी मुक्त हुए, जबकि पहले ओम नाम के जाप से भी बहुत सिद्धियां थी, मंदिर भी फेर दिया था, पत्थर को दूध भी पिला दिया था, लेकिन नामदेव की मुक्ति नहीं थी जब तक ये सार शब्द नहीं मिलता। अब पुण्यात्माओं यो ज्ञान इतना उलझ पुलझ हो गया कि अब ऐसा बताया जाए तो आम आदमी को स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि वो निराधार ज्ञान हमने लोक वेद गणा सुन रखा है। तो हम क्या बताते हैं, फिर हम शेष नाग के पास भी गया, फिर हम शेष नाग के पास भी गए, उसको भी समझाया, लेकिन शेष नाग ने भी नहीं मानी बात। तब पुन नाग लोक चल गयो, ता से कहो कुछ कहबे लेवो, पुरुष भेद को जानत नाही, लागे सभी काल की छाही। परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता धर्मदास, सब काल के जाल में, काल के आधार पर आधारित है। राखनहारा और चिन्हो भाई, यमसो तो को ले छुड़ाई, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जे ध्यावे, वेद जा को गुण निस्दिन गावे, जोई पुरुष कहो राखनहारा, सोई तुमको लेकर है गारा। जिसको तुम कहते हो ना ये हमारा भगवान है, वही तुम्हें मार रहा है, परमात्मा बता रहे हैं। शेष खान विष तेज स्वभावु, वचन प्रतिधर दे नहीं आओ। अब शेष नाग के कहते ज्यादा ही वो विष का दबाव था, उसने एक नहीं मानी। सुनो धर्मनी सुलक्षण नागर, सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर, तब हम चल आए भव सागर। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए इस पृथ्वी लोक पे, आए तब मृतमंडल माही, जीव पुरुष कोई देखा नाही, पुरुष जीव कोई देखा नाही, यहां आकर देखा कोई परमात्मा को जानने वाला, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने वाला कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है। किसको कहिए पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक यम का भेसा, जो घातकता को विश्वासा, जो रख सकता ही बोलने उदासा। जो घातक है, जो खा रहा है, जो मार रहा है, गधे कुत्ते बना रहा है, कोई बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार रहा है, किसी पुत्र मार रहा है, उसके ऊपर तुम विश्वास किए बैठे हो, और जो रक्षक है उसका विश्वास तुम्हें नहीं हो रहा। ताही जपे कोई, ताही जपे सोई घर धर खाई, तब हम शब्द चेत चित आई, जीव मोहे जीव मोह वस चीने नाही, तब अस भाव उपजा ही माही। परमात्मा कहते हैं धर्मदास एक बार तो मेरे मन में ईसाया कि इसे किस ब्रह्मांड में आग लगा दूं, और इन सब जीवों को ले चलू, लेकिन फिर अपना ही वजन याद आ जाता है कि ये फिर फाउल पॉइंट है। अब देखो ये मोह ममता में, ये नकली मोह ममता में फंसा के ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं रही है, और इसने इतना दबाव दे रखा है पुण्य आत्माओं को, इनको नकली लालच लोभ दे रखा झूठा, और इसमें ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो इस प्रकार मन में आया कि इसको आग लगा दूं सारे, लेकिन फिर मन में आता है कि नहीं, ये मेरा ही वचन भंग होता है। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैं यहां पर आया तो मुझे कोई भी परमात्मा के विषय में जानने वाला प्राणी नहीं मिला। तो क्या बताते हैं, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, वेद पढ़ियो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साधो भाई मुझे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खपर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय धर्म बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय धर्म बनाया, परतरिया संग फिरा भरमता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, कह कबीर सुनो भई साधो इस भूल का मरम ना पाया, कह कबीर सुनो भई साधो इस भूल का भेद ना पाया, जिसने पा गया भेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। तो क्या बताते हैं धर्मदास, जब मैं यहां आया तो मुझे कोई भी जीव परमेश्वर के विषय में जानने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिनको तुम पूर्ण प्रभु मानते हो, इनको भी कोई तत्व ज्ञान नहीं था, और न ही मोहम्मद जैसे साधकों को, और न ही मच्छंदर जैसे नाथों को भी कोई ज्ञान नहीं था। और जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आता। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में कहा है, श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, अर्थात जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, और मैं जो संकेत कर रहा हूं गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कि परमात्म तत्व के बारे में किसी तत्व ज्ञान दर्शी संत से पूछो, फिर वो जैसे विधि बतावे फिर वैसे भक्ति करो। कहते हैं फिर वो ऐसे इस मेरी बात पर आधारित होकर इस ज्ञान को जो परख लेगा, समझ लेगा, किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा और वो उस परमात्मा को जान लेगा, फिर वो जरा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, वो फिर यहां संसार में नहीं रहेगा। यही परमात्मा कहते हैं कि जिनको इस भूल का भेद मिल गया कि हम कैसे चक्कर में पड़े हुए हैं, आज पता है, आज हम सोचते हैं ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है, कल मृत्यु हो जाती है हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये भूल जब हमारे हृदय से हट जाएगी, कहते हैं फिर यहां से फिर कोई यहां की वस्तु नहीं मांगता, जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखिए, पवित्र गीता जी ये देखना अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29। संस्कृत है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितः, माम आश्रितः यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्, ब्रह्म तत् इसको तत् ब्रह्म भी कह सकते हैं, वे ते तत् ब्रह्म विदु, जो केवल जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए ही जो मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर प्रयत्न करते हैं वो उस परमात्मा को जान चुके हैं, और कृष्णम माने सारे अध्यात्म कर्मम च अखिलम, और सारे अध्यात्म कर्म यानी यहाँ के जो भक्ति ज्ञान को समझ चुके हैं वो ही जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो मेरे माम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर जो आश्रित हो जाते होंगे हो जाएंगे, वो फिर जन्म जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक तत् ब्रह्म, तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, वो तत् ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वो सारे कर्म को जान चुके हैं जो यहां से जन्म और मृत्यु से ही छूटने की अर्ज प्रार्थना और प्रयत्न करते हैं। अब देखो वही परमात्मा आप बता रहे हैं, वही वेद हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो तीसरे में क्या लिखा है, अब 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये केवल 7वें अध्याय में 30 मंत्र है, उसके बाद 8वां प्रारंभ होता है। इसमें लिखा कि जो अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियद सहित माँ मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित वाले जो मुझे ही जानते हैं। कहते हैं एक तो दो बात कही है कि एक तो जो पूर्ण धात्मिक ज्ञान को समझ जाते हैं वो तो यहां से छूटने की प्रयत्न करते हैं, और जो केवल अपने निष्कर्ष से मुझे ही भगवान माने बैठे हैं वो मुझे ही जानते हैं और नहीं जान पाते, वो मेरे जाल में रह जाते हैं। यही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में पूरी सतीथि बताने के उपरांत कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका पालन करता है और वही जो है सर्वशक्तिमान है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि मेरे को तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने प्राणी मेरे अंतर्गत आते हैं मैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, पर वास्तव में मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो इसका यही अर्थ दिया है कि जो मेरे तक सीमित मानते हैं, मुझे ही समर्थ मानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित है, और जो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, क्योंकि ये तर्तीवाइज ज्ञान है, तर्तीवाइज बिल्कुल तर्तीवार ये तीसवा अध्याय सातवें अध्याय का तीसवा श्लोक समाप्त हो गया कि वो तो केवल मुझे ही जानते हैं जो केवल मेरे में ही लीन है, मेरे तक ही सीमित हैं, मुझे ही सब अधिदेव अधियजादी मानते हैं, वो तो मेरे तक ही सीमित हैं। अब आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर कौन है, वो क्या है, वो तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्, वो परमात्मा कौन है, और के ये अध्यात्म है, के अधिदेव है, क्या अधिभूत है, इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में जवाब दिया है। भगवान ने कहा है कि अक्षरम परम अक्षरम ब्रह्म परमम, ये लिखा है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमम अक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्ब्रह्म कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब स्पष्ट कर दिया कि गीता बोलने वाले प्रभु से कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, उसकी उसका ज्ञान उसके गुण से परिचित होने के उपरांत प्राणी यहां नहीं रहेगा, वो फिर पार हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास मैं चारों युगों में आया हूं, तो क्या बताते हैं। अब धर्मदास जी परमेश्वर के विषय में परमेश्वर की महिमा का एक शब्द सुनाते हैं, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार और जा तेरी महाराज हो जा मेर महाराज जिस पैर जा तेरी, तुम कर दो पल में पारे हो जा। काल कष्ट से जीव दुखी ही सुने, मन तुम्हारे त्रस आया कना, तपत सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आए कना, तपत शिला पे जीव जड़े थे उनको देख दुख पाए कना, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी राज जिस पैर जा तेरी, तुम कर दो पल में पार। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया कना, विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के में लाया कना, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कना, वहां आपकी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, आपकी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम पल में पार हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज हो जा मेर राज जिस पैर जा तेरी, तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल बालक बन दिखलाया कना। नीरू नीमा गए नानकु वहां जुलाहे को पाया कना। काजी आगे नाम धरण को वहां नाम कबीर रखवाया कना। हाँ तुम पूर्ण ब्रह्म करता हर बन गे कबीर हरी। तुम पूर्ण ब्रह्म करता हर बन गे कबीर हरी। तुम कर दो हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज। हो जा रजा तेरी तुम पल में पारे हो जा। मथुरा पुरी में धर्म दास को आके आप चताया कना। वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सत मार्ग दिखलाया कना। ब्रह्मांड इकी सो ये राज काल का नो सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सरबद सार गीता दूर धरी। तुमने दे दिया सरबद सार गीता दूर धरी। तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेर तेरी महाराज। हो जा रजा तेरी तुम कर दो। बलख बुखारे में संत कैद किए आके आप छुटवाए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा बताए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा कहीं सुन के चक्कर आए कना। बंदी हो के सेज बिछाई तन तीन कोरड़े खाए कना। तुम नरसे बन गे नार उड़ा चीर जरी। तुम नरसे बन गे नार उड़ा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार हो रजा तेरी महाराज। हो जा राज जिस पे रजा तेरी तुम। ओ तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे शस हो के सुल जाए कना। सुच सुपच सुदर्शन को शरण में लेके अपने वचन निभाए कना। नीरू निमा उसके मात पिता थे वो बेटा बन मुक्ताए कना। जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी। जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम। जिस पे रजा तेरी हो रजा तेरी महाराज। हो जा मेर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो। गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए कना। छोड़ानी मैं ग्रंथ की रचना कर सारे भेद दिए कना। राम देवानंद संत आपके अपनी शरणा लिए कना। दिया राम पाल उदार देके शब्द जड़ी। दिया राम पाल उधार देके शब्द जड़ी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेर आज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में सत साहिब परमात्मा के विषय में गुणगान किए हैं कि हे प्रभु हम तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करके आए थे और फिर भी आपने अपनी अंश आत्माओं पर रहम आया। क्या बताते हैं कि काल कष्ट से जीव दुखी सुने तुम्हारे मन तरस आया कि ना आपके मन में देख फिर भी हमारे प्रति इतना रहम आया मेरे प्रभु। और सतलोक न छोड़कर परमेश्वर इस काल लोक में आया कि ना हम तो निकम्मे थे दाता कहने बुरा कर्म किया हमने आपको भूल के इस काल में आस्था कर ली ये प्रभु आप फिर भी हमारे पीछे पीछे लगे रहते हो। और तपत्सला पर जीव जड़े थे उनको देख दुख पाया कि ना पुण्यात्मा अपना पुत्र या पुत्री कितनी ही गलती कर दे मात पिता उसके दुख में फिर भी दुखी रहते हैं। और पता होता है कि ये जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये कर्म कर रहे हैं इनको हानि होगी फिर वो दुखी होते हैं तो भी माँ बाप उनके कष्ट में दुखी ही हुआ करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे लिए भ्रमते भटकते रहते हैं और फिर भी हम इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि काल हमें ज्यादा जो है भ्रमित किए हुए। क्या कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे गरीब दास हम के करें यो काल करे जीव खंडे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मंडों का रचनहार सब सृष्टि का मालिक हूं मैं और फिर भी ये काल की बातों में ये जीव शीघ्र आ जाते हैं ये झूठा लालच दे के काल से ये काल के दूत ये अन्य नकली संत मेरे जीव आत्माओं को मेरे से तोड़ ले जाते हैं मेरी मर्यादा से बाहर कर देते हैं। तो गरीब दास कबीर साहब कहते हैं कि इब मैं के करूं यो काल करे जीव खंडे क्योंकि हमारा एक नियम बना हुआ है कि जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा हो और जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा सेवक है जो काल की साधना करेगा वो काल का होगा उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ये काल हमारे से भलो भला कर ले जाता है तो क्या बताते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं और ये पुण्यात्मा मेरी ही तलाश में घूम रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं और जिन भगवानों से ये आस्था किए हुए हैं उनसे ये सुख नहीं हो सकते जो अप्लीकेशन ये लेकर फिर रहे हैं जो प्रार्थना पत्र ये जिनके सामने रख रहे हैं ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं मैं कबीर परमात्मा है इस सारी सृष्टि का रचनहार हूं मैं जो चाहे सो कर सकता हूं पर मेरे पर विश्वास करो मेरी मर्यादा में रहो मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है मुझे ढूंढ रहा है और मैं कहता हूं मैं हूं फिर क्योंकि ज्ञान इस नकली ज्ञान के आधार पर असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीब दास जी कहते हैं यानी कबीर साहब कह रहे हैं गरीब दास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को हम जो एक दूसरे से विमुख होए बैठे हैं अब इसने कौन समझावे इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की गुरु की आवश्यकता होती है जो जीव और पीव का मेल करा दे जो जीव को पीव का दृढ़ निश्चय करवा दे कि सच अब चाहे को कितना ही विद्वान बना फिर उसको दृढ़ निश्चय कति नहीं है, वो जब भी फेल हो जाए दो मिनट में तीसरी बात उस पर चले नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान निराधार है। और अब हमारा ज्ञान बिल्कुल आधार होगा, शिला पक्की रखी गई, अब हमें ज्ञान में विचलित कोई प्राणी नहीं कर सकता। और ज्ञान में हम विचलित नहीं होंगे तो भगवान हमारे निकट होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान से दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे पर कितना कष्ट आ जाए। हम फिर इस बात से परिचित हो जाएंगे कि जब हमें परमात्मा के चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा, जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी फिर वो विचलित नहीं हो सकते, उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे? बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े, जैसे कागज हाज का अब तक न दूजी ठोरे। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के, जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तक में चल पड़ोगे, और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150 से 200 किलोमीटर यात्री यात्रा कर लेते हैं, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यात्री उस समय के पहले के यात्री और वो चालक असमंजस में पड़ जाते थे कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि उस समय ये इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसमें दिशा सूचक होते थे जो कई जगह ऐसे चुंबकीय चट्टाने आ जाती थी जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते थे, दिशा बदल जाते थे। वो अपने दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी परख करने के लिए उस कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जब वो जहां से वो उठाया जाएगा तो वो वहां उसी दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो जहाज के जो चालक है वो क्या करते थे, उस कौवे को डला मार देते, पत्थर मारते, उसको जहाज से उड़ा देते, विवश कर देते उड़ने को, वो फिर उस दिशा में चलता जिस दिशा से वो आए थे, जहां से चले थे। पूर्व से चले थे तो वो पूर्व की तरफ ही उड़ेगा, सीधा उड़ेगा। तो इससे वो अपना आइडिया लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर अपने जहाज को सेट कर देते। और कौवा फिर देखता है, 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, उसने देखा कि तक कोई बैठने का स्थान नजर नहीं आ रहा, तो वापस आकर उस समुद्री जहाज पर ही वो विराजमान होता, उसने कोई और स्थान दिखाई नहीं देता, वो सब जगह डूबने की नजर आती। ऐसे ही जब आप परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित हो जाओगे, तत् ब्रह्म के विषय में, यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर आपको इस पृथ्वी पर कोई भगवान दृष्टि गोचर नहीं होगा जिससे हम अपनी सुरक्षा की या अपनी मनोकामना पूर्णा की अर्ज करेंगे। वो सब डूबने वाले होंगे, वो समुद्र के जल की तरह होंगे, वहां केवल जहाज ही सपोर्ट होगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आके तुम्हें सुख होते हैं, और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे, या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो, परमात्मा ये संकेत करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी और फ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए, तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते हैं। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है, तो सारे भगत दिखाई देते हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग चलती नजर आती है, भादवे में सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं। श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे, कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोर ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा, हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना तेरे चरणों में हम पड़े रहे, संसार से विरक्त हो जावे, इस संसार के असार का हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से, ये तो जीना तो थोड़ा ही बला जय सत्य सुमरण हो और ये लाख वर्ष का जीवना लेख रहना को, अगर आपकी सत साधना है तो आपका एक दो वर्ष चार वर्ष दस वर्ष का जीवन बहुत है, बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की कि दाह लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा तो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़के चली, तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज आज परमात्मा संदेश आवत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रहने का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है, हम तो यहाँ धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी मारा नहीं चले, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है, जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है इसलिए देर लग रही है ना, हम भी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देख के वो बन रो वन मन माही, ऊंची डारी पात थे आज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते हैं परमात्मा तुम किस पर राजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में वन में एक वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे आज सारा विनाश हो गया उजड़ गए, ऐसे ही परमात्मा कहते जो महाप्रलयोगियों को ना पावे। पात जड़ंता यू कहे सुन भई तरवर राए, अब के बिछड़े ना मिले न जन कहां गिरंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, पात तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते ते जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना बेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहां से प्राणी प्राण छोड़कर जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है हे भगवान ना बेरा कित कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं परमात्मा कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, या की या है रीति है एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ की तो ये रिवाज है एक मर गया एक जन्म हो गया एक मर गया एक मृत्यु और जन्म हो रहा है, ये तो यहां से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है। फिर कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र होता है राजाओं के तो ढोल बाजे बजाते हैं, गरीब आदमी का पुत्र होता है तो थाली पीटते हैं अपनी, उससे खुशी प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या का ऊपर खुशी मना रहे हो, ये तो आना जाना लगा रहा है जैसे कीड़ी का नाल, किड़नाल होता है, हजारों कीड़ी लाखों इधर जा रही है लाखों इधर आ रही है। कहते ये तो यहाँ का रोज का काम है। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जा जंजीर। जाना तो सभी ने पड़ेगा लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। एक तो दोषी की तरह पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जिन्होंने सत भक्ति नहीं की, और एक परमात्मा लेकर जाएगा जिन्होंने सत साधना मर्यादा में रहते हुए की है। तो इस प्रकार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यहां संसार में हमने चलने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए, हमने यहां से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो, थोड़ा ही समय वो सत स्मरण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का स्मरण 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके, तो कितना हो गया एक श्वास का जाप, एक मौखिक जाप ते 1000 से 1000 गुना करके देखो 10 लाख। एक श्वास के सिमरण का 1 10 लाख के तुल, जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खूटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति कर ले जो यही चक्कर में पड़े रहे और यही की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग बताया, ओम 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 ओम, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ओम 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 मैं ओ मैं ओ मैं ओ ऐसे करने लगा। तो उल्टा नाम जप्या जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम राम नहीं जप्या था वाल्मीकि जी ने, नहीं, क्योंकि ये ओम नाम नहीं कहा जाता, उपदेशी उपदेशी को नहीं कह सकता ओम नाम जप ले, या ये भी नहीं कह सकता वो ओम ओम जप रहा है, ये भी नहीं कहा जाता था, मर्यादा से हम दूर हो चुके। वो तो साधक ही अपना मुख से जाप करता है और दूसरा कहता भी राम राम जप ले, राम राम कर राम राम, यानी राम का नाम जप, राम का नाम ये ओम मंत्र है, इस ब्रह्म तक के नाम का, और उस परमात्मा का नाम है वो दो मंत्र का, तीन मंत्र का, ओम तत् सत, वो राम नाम है। तो यहां ओम ओम करके 10,00,000 बार, और श्वास से जो हम विधिवत, क्योंकि अधिकारी बिना ये मंत्र काम नहीं करता, श्वास से जो ये दास आपको नाम देगा वो एक बार 10,00,000 जैसे नाम का आपका काम करेगा। इतने धनी हो जाओगे तुम, एक तो 80 रुपए कमावे एक मजदूर, और एक फैक्ट्री का मालिक 10,00,000 रुपए रोज उठाता है एक दिन की कमाई। तो ऐसे आपको ये धनी बनाने के तरीके बताए परमेश्वर ने। आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है तो आपको एक कदम यहां तक रखोगे विधिवत सच्चे हृदय से, एक कदम की कीमत आपको कहते एक यज्ञ के तुल्य होती है। हम बहुत युगों के ऋणी हो चुके, इन सब ऋणों से मुक्त इस तरीके से हुआ जाएगा। तो क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जाते हैं ये तीन लोक का मोल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर की महिमा अनुसार ज्ञान बताते हैं इस सत नाम को जो दो मंत्र का होता है। सत नाम पालड़े रंग होरी हो, एक तराजू के एक पालड़े में एक श्वास का नाम ये दो मंत्र का होता है, ओम और दूसरा जो आप जिसने उपदेश मिला उसको पता है। वैसे हमने पुस्तक में लिखा लेकिन हम सीधा नहीं बोल सकते, अनधिकारी को अनुपदेशी को भी नहीं कहा जा सकता। सत नाम पालड़े रंग होरी हो, एक श्वास के सिमरन की कीमत एक पलड़े में रख दे तराजू के में, और दूसरे में ये 14 लोक इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक रखते, और तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। पासंग क्या होती है, जो तुला होती है, तुला वो तराजू में कुछ डिफेक्ट होता है, उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए जो सौदा तोला जाता था, जैसे कनक तोलते थे या गुड़ तोलते थे, गेहूं तोलते थे, तो उस गेहूं का ही कुछ हिस्सा बट्टों की तरफ रख लेते थे ताकि वो बैलेंस बनाने के लिए, फिर बट्टे उस साइड में रख देते थे और शेष सौदा फिर दूसरे उस तराजू से तोल उस तख पलड़े में रख रख के तोला जाता था। तो परमात्मा कहते हैं ये तीन लोक जिन पर ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक हैं, इन तीनों लोकों को तो तराजू के पासिंग बनाने के लिए बैलेंस करने के लिए रख दे और 14 लोक एक तरफ चढ़ा दे, तो ना वो कीमत परमात्मा के एक नाम की ज्यादा है, वो पलड़ा भारी रहेगा। ये 3-14 लोक का पलड़ा भी भवन का 14 द्वीप का ऊपर उठ जाएगा, ये 14 लोक भी ऊपर उठ जाएंगे, अर्थात इतनी कीमत है। तो पुण्यात्मा ये देखना ऋणी कितने हो, इतना सिमरण एक सिमरण जो आप कर रहे हो उसके बाद भी अभी आप ऊपर को नहीं चल पा रही है आपकी आत्मा, तो आप कितना ऋणी हो, और ये ऋण ही उतारने से यहां से चला जाएगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बना दे। हाँ ठीक है, यहां से नाम कट जाएगा, दूसरे स्थान पर जाने लग जाएगा, उसमें इस कमाई से सिद्धि आ जाएगी, वो कित और जंतर मंतर करने लग जाएगा, उससे लाभ दुनिया को होने लग जाएंगे, लेकिन वो स्वयं नरक में जाएगा। वो कमाई इकट्ठी करी थी वो झाड़ जाओगा, दुनिया में महिमा भी बन जाएगी लेकिन 84 लाख योनियों का पात्र हो जाएगा। ये बहुत भयंकर जाल है, इसका एक ही तरीका बता है। क्या बताते हैं, जीवन ते थोड़ा ए भला जै सत सो मरण हो, 1,00,000 वर्ष का जीवन लेख धर ना को। अगर सच्चे मन ते मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक श्वास के सिमर सुमरण की कितनी कीमत पर, मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते, और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़फता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जावे तो तुरंत काम बन जाता है, बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है उसके, वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के जब हम यहां से चलेंगे तो काल का ऋण देना होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, सभी मेरे लेवल की जो धार्मिक पूजाएं तूने की हैं, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ धवन धर्म ये पुण्य जो हम कर रहे हैं ये काल को यहीं छोड़ना, हमने ये नहीं हम हमारे साथ जाएंगे, लेकिन इस बिना हम छूटे भी को ना। ये कहता है कि मेरे जो लेवल की पूजा है वो मुझे मुझ में छोड़ दे, मेरे को दे दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम क्या करते रहे ऋषि बनकर या जैसे साधना करके ओम ओम का नाम जाप करके महास्वर्ग में चले गए, फिर स्वर्ग में चले गए, अपनी पूंजी की मलाई खा ली और पाप न्यों के न्यों रह गए, और उन पापों को कुछ नरक में भोगा, कुछ 84 लाख योनियों में भोगा, फिर भी ऋणी के ऋणी हम रहे। तो अब हम इस पूंजी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना हम महादेव बनेंगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाएंगे, और न ही हम यहाँ पृथ्वीपति बनेंगे। हम इस पूंजी को काल को दे देंगे, अपनी यहाँ से ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सब पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस एक परमात्मा की शरण में जा, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण में व्रज माने जाओ। और इन अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा के व्रज माने आओ कर दिया, आ जाओ, व्रज माने आना नहीं जाना होता, गोमीन कम नहीं हो सकता, गो माने जाना होता है तो उसका अर्थ आना करना महामूर्खता होती है, वो अज्ञानी है। ऐसा ही ना अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है, ये अज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं, अपने उल्ट पुल्ट सोच लड़ा के ऐसा बनता है फलाना बनता नहीं, ये ज्ञानहीन प्राणी थे। तो क्या कहा कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा सुच, तू चिंता ना कर, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि पाप से ही, अपराध से हम दुख पाते हैं, नरक जाते हैं, गधे कुत्ते बनते हैं, टांग कटती है, आंखें फूटती हैं। हम जब इसका ऋण मुक्त कर देंगे तो ये हमें कुछ नहीं बनाएगा और हमारा यहाँ से पीछा छोड़ देगा। ओम नाम का जाप और ये साधनाएं हम यहाँ छोड़ देंगे, और प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये माता दुर्गा और गणेश जी के कमलों से हमने बरी होकर के त्रिकुटी तक पहुंचना है, और यहाँ की सुख सुविधा हम उस जेब खर्च से जो हमारा पहला मंत्र उसे लाभ मिलता रहेगा, जिससे हमारी ये सांस के कीमत की पूंजी व्यर्थ नहीं होगी। दूसरा जो मंत्र है वो हम परब्रह्म के लोक में का किराया देंगे, उसके सात संघ ब्रह्मंडों से पार होना है, वो हमें वहां से पार कर देगा, वहां से छोड़ देगा, उसका वो किराया दे जाएंगे जो दूसरे मंत्र का, वो तत् मंत्र सांकेतिक है। और तीसरा मंत्र जो सार शब्द है वो हमें सतलोक प्राप्ति कराएगा, ऐसे हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। कि पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर सर्वप्रथम तपकशिला पर आए, वहां पर उन तपकशिला पर जल रहे प्राणियों को वास्तविक ज्ञान कराया। उसके बाद ज्योति निरंजन काल के साथ परमेश्वर की तकरार हुई, वाद विवाद हुआ। ज्योति निरंजन ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तीन युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग कलयुग में आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। परमात्मा ने उसको ये वचन दे दिया कि ठीक है, सतयुग त्रेता द्वापर में मैं कम प्राणी ले जाऊंगा, और चौथे युग में कलयुग में मैं बहुत प्राणियों को तेरे से मुक्त करवा दूंगा। अब यहां पर पुण्यात्माओं के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या परमेश्वर को ज्ञान नहीं था कि ये काल उससे क्या मांगेगा, क्या उनको ये पता नहीं था कि वो ये मांगेगा कि तीन युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही प्राणियों को मुक्त करा ले जाना। परमेश्वर कबीर साहब को सर्वज्ञ कहते हैं, परमेश्वर को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी जानी जान की उपाधि प्राप्त है। उनको पता था कि ये बालक के मांगेगा, मेले में बच्चा अपने मात पिता के संग होता है, पिता को पता होता है ये क्या मांग सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का खिलौना, बढ़िया सी कार मांग सकता है और इतनी उस समर्थता उस पिता की होती है, इसलिए उस बच्चे को कि हर वस्तु को जो मांगना चाहता है पिताजी उपलब्ध करा देता है। परमात्मा को मालूम था कि ये क्या मांगेगा, और उनको ये भी मालूम था कि तीन युगों में ये प्राणी गणे दुखी ना हुए और चौथे युग में इतने परेशान हो जाएंगे कि तोबा बोल जाएंगे, और जिस साधना को ये कर रहे होंगे उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा, फिर ये मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे, और आते ही उनको वो सुख होंगे जिनकी उनको तलाश थी, फिर वो समझ जाएंगे परमात्मा कौन और कैसा है। क्योंकि सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की आयु मनुष्य की होती है, उसमें इतना सुंदर शरीर, इतना सुदृढ़ शरीर होता है, बहुत लंबा चौड़ा, कम से कम 30-35 फुट ऊंचाई एक मनुष्य के शरीर की होती है, और बहुत तगड़ा शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, शुद्ध विचार होते हैं, राग द्वेष और ये विषय वासना उसमें ज्यादा नहीं होती। फलदार वृक्ष होते हैं, कोई विशेष काम करने की आवश्यकता प्राणी को नहीं होती। पूरे पृथ्वी के ऊपर घने जंगल होते हैं और फलदार वृक्ष अधिक होते हैं। आज से 10-20-30 वर्ष पहले हम भी खेतों में जाते थे, ऐसे ऐसे आइटम लगा करते थे झाड़ी दंखाड़ों का कि सारा दिन रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और उस समय तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल होते थे वृक्षों के। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, और स्त्री विधवा नहीं होती थी। कहने का भाव यह है कि जिसको हम यहां सुख मानते हैं वो सुख पूर्ण पूर्व होता है, उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ होता है। त्रेता युग में भी प्राणी सतयुग की तुलना में थोड़े से कम सुखी होते हैं, लंबी आयु बहुत होती है, नेक आत्मा होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं, और सभी वेदों अनुसार ही साधना करते हैं, आन उपासना, नाना पंथ नहीं बनते, नाना ये भिन्न भिन्न मजहब नहीं बने होते। त्रेता के बाद फिर द्वापर में भी ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता, परमात्मा को मानने वाली आत्माएं विद्यमान रहती हैं। लेकिन तुलनात्मक सतयुग त्रेता द्वापर में कष्टों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो विधिवत साधना करने वाले होते हैं, और जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उन्हीं को इन तीनों लोकों में जन्म प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग से प्रारंभ होते हैं, फिर भी उनके शेष जीवन रहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में भी वो प्राणी आते रहती हैं, और जब तक वो कलयुग में पहुंचते हैं कुछ ऐसी भी पुण्यात्मा है जो बार रह रहकर उनको मनुष्य जीवन भी मिलता रहता है। जिनके ज्यादा पुण्य होते हैं उस आधार पर उनको मानव शरीर अधिक मिल जाते हैं, लेकिन वो होती है उन्हीं की पूर्व जन्म की कोई कमाई और वर्तमान के जन्म की भी कमाई उसके साथ इंक्लूड होती है। परमात्मा को पता था कि ये तीन युगों में जीव इतने कष्ट में नहीं उठाएंगे जितना के कलयुग में होगा, इसलिए प्रभु ने कहा कि ठीक है ज्योति निरंजन, जैसा तू कहता है ऐसा ही तुझे तथास्तु ऐसा ही हो जाएगा। अब कलयुग में क्या होगा, काल ने कहा था प्रथम अंश हमा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई ही पीछे अंश तुम्हारा आई। काल कहता है कि पहले मेरे दूत चले जाएंगे और सबको गुमराह कर देंगे, देवल धाम और देव पुजाई, जाओ ज्ञानी संसारा जीव ना माने कहा तुम्हारा, बेशक जाओ जोगजीत तू संसार में, कोई भी प्राणी तेरी बातों को नहीं मानेगा।